Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's M-E-N-T-Z-A.
हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सबको?
हाँ, अब आ रही है. अब
ओके, थैंक यू. वेलकम ऑल.
सजीव सर आ गए हैं.
हाँ जी, सजीव जी नमस्कार, और सभी लिसनर्स को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार. वेलकम उषा जी, वेलकम सजीव जी, शेरॉन,
लक्ष्मी जी नहीं दिख रही हैं.
आ रही होंगी लक्ष्मी जी, दो मिनट में पहुंच जाएंगी वो भी. ओके, तो वसीम जी हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम.
वक्त हो चला है अब.
जी बिल्कुल. तो कहानी बुनो में आप सबका स्वागत है. वसीम जी बढ़िए, आगे बढ़िए.
दोस्तों नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग. हम हाजिर हैं मंजा पर कहानियों का एक बेहद खास प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है कहानी बुनो. और आज है कहानी बुनो का चौथा एपिसोड. मैं हूं असीम अकरम और मेरे साथ हैं प्रोग्राम की को होस्ट दीपिका जी, आज की कहानीकार लक्ष्मी जी और हमारे स्पीकर सजीव सारथी जी. दोस्तों, हम सबने अपने बचपन में तरह तरह के तजुर्बों के साथ जिंदगी जी है. खेलने कूदने, मस्ती करने और खाने पहनने से लेकर पढ़ने लिखने तक के किस्सों से हम सब दो चार हुए हैं. बचपन से जुड़े इन तमाम किस्सों में स्कूल जाने को लेकर कुछ किस्से आप सबको भी याद होंगे, है कि नहीं? किसी को बचपन में उसकी शरारत के लिए थोड़ी बहुत मार पड़ी होगी, तो किसी को शाबाशी भी मिली होगी. अब शरारतें और बदमाशियां भी किसी के रोके कहां रुकती हैं भला. दरअसल बचपन के हिस्से में शरारत ही तो वह हक है जिसे छीना नहीं जा सकता. बहरहाल, शरारतों से इतर अगर पढ़ने लिखने की बात करें तो हम में से कुछ को स्कूल जाना अच्छा लगता रहा होगा, तो कुछ स्कूल जाने के ख्याल से ही परेशान हो जाते रहे होंगे. मुझे याद है बचपन में मैं शरारती तो था लेकिन पढ़ने में ठीक ठाक था. फिर भी स्कूल जाने को लेकर मेरे मन में एक फोबिया सा बना रहता था, क्योंकि मेरा मन खेलने में ज्यादा लगता था. पुराने समय में बच्चों के खेलने के लिए मोबाइल नहीं था, वीडियो गेम नहीं था, उन्हें पास पड़ोस में या खेत खलिहान में जाकर खेलना होता था. और तब स्कूल बंक करने का अच्छा खासा मौका भी होता था, जो आज के बच्चों को नहीं मिल रहा है. लेकिन अब तो आलम ही दूसरा है. अब हमारी दुनिया कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल के फ्रेम में बंधने को मजबूर है. यही वजह है कि कोविड के चलते जब देश भर में लॉकडाउन लगा और जब बच्चों के स्कूल बंद हो गए, तो उनके खेलने कूदने और शरारत करने पर जैसे अघोषित पाबंदियां सी लगा दी गई लग गई या कहिए कि लग गई. बड़ों ने सोचा कि बच्चे मोबाइल में गेम वगैरह खेलते ही हैं, तो क्यों ना ऑनलाइन के जरिए उनकी पढ़ाई जारी रखी जाए. बहरहाल, फिर से स्कूल खुल गए हैं और बच्चे फिजिकल क्लासेस के लिए जाने के लिए तैयार हैं. इसलिए हमने आज की कहानी के लिए पिछले सप्ताह एक टॉपिक दिया था, मुझे स्कूल नहीं जाना. यानी कोई बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता, किस बात का डर है उसे? क्या उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता? क्या उसके स्कूली दोस्त अजनबी जैसे लगते हैं? ऐसे अनेक सवाल हमारे मन में थे, जिनको लेकर सब अपने अपने तरीके से कहानी बुन सकते थे. कुछ कहानियां आईं, जिनमें से एक जो है लक्ष्मी जी की कहानी हमारे पास आई, बहुत अच्छी लगी, संवेदनशील लगी. जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, हमने जो टॉपिक दिया था उस पर फिट बैठती कहानी आई. तो हम चाहेंगे, लक्ष्मी जी आ गई हैं, हम चाहेंगे दीपिका जी कि सबसे पहले बातचीत की जाए कि इस खूबसूरत कहानी को लिखने के लिए क्या तैयारी की थी लक्ष्मी जी ने. लक्ष्मी जी अगर
बिल्कुल वसीम जी, एक चीज अभी इस कहानी की बातें करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप अगला टॉपिक भी बता दीजिए.
अच्छा,
अभी तो आज हम पहले ही बताते हैं.
हाँ, इस बार हम टॉपिक पहले बता दे रहे हैं. इस बार का टॉपिक है पहाड़ों का सफर. वो पहाड़ों का सफर कैसा भी हो सकता है, आपकी कोई याद भी हो सकती है, पहाड़ पर कुछ दिन गुजारने के लम्हे भी हो सकते हैं, या कोई अचानक कोई प्लान बना हो और आप चले गए हो, या ऑफिस के टूर पर पहाड़ घूमने का मौका मिला हो, तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी यादें हों उसमें से अगर कोई इंटरेस्टिंग सी कहानी मिले, कहानी आपके दिमाग में हो, कहीं दिमाग के किसी कोने में, जहन के किसी कोने में बैठी हो, तो आप वहां से कहानी बुन सकते हैं। हम सभी लिसनर्स को आह्वान करेंगे कि वो इस टॉपिक को गौर से सुने। पहाड़ों का सफर, यानी सफर और पहाड़, ये दो चीजें बहुत जरूरी चीज हैं, कहानी में आनी चाहिए। शीर्षक नहीं है पहाड़ों का सफर, लेकिन ये टॉपिक
जी वसीम जी, पहाड़ों का सफर सोचते ही ना एक हाँ, रोमांच भर उठता है। वादियां, नदी, पहाड़, झरने, जाने क्या क्या जहन में उभरते हैं। पर हमेशा पहाड़ों का सफर आसान नहीं होता,
जाने क्या क्या,
तो इसलिए हमेशा सुखदाई होता है नहीं होता, ये सारे अनुभव कागज पर उतारिए और हमें लिख भेजिए 500 से 800 शब्दों में kahanibuno@gmail.com पर मंडे रात 9 बजे तक।
बिल्कुल, मैं मेल आईडी फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि kahanibuno@gmail.com, यानी kahanibuno@gmail.com। मंडे तक आप कहानी हमें भेज दें ताकि हमें उसे एडिट करने में और उसे परखने में थोड़ी सहूलत मिल जाए, वक्त मिल जाए, और दीपिका जी भी उसे पढ़कर अपना टाइम शेड्यूल देख लें कि कितने में ये कहानी, कितने मिनट में ये कहानी पढ़ने में आ रही है, नरेट करने में आ रही है। जी दीपिका जी, बताएं।
जी चलिए शुरू करते हैं, लक्ष्मी जी से थोड़ी बातचीत, फिर उनकी कहानी को सुनाएंगे। लक्ष्मी जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। वेलकम
जी, नमस्ते सभी को मेरा।
नमस्ते
जी।
हाँ जी लक्ष्मी जी, आपकी कहानी बहुत खूबसूरत लगी, जो हमने टॉपिक दिया था उस पे 100% खरी उतरी है। और कहानियों में अगर मैसेज हो और किसी के लिए प्रेरणा हो तो वो और भी बेहतर हो जाती है, तो बस इन्हीं सब क्वालिटीज से भरी हुई आपकी कहानी है। तो हम आपसे ये, मैं एक कहानी, आपकी कहानी पर एक सवाल मेरा ये था कि जैसे आपने डर के बारे में लिखा है, तो क्या आपके दोस्तों को भी ऐसा डर सताता था कभी?
जी बहुत से, जैसा कि मैंने अपनी कहानी में जिक्र किया था कि मेरी एक दोस्त थी, उसको बड़ा डर लगता था कि उसके पेरेंट्स कहीं उसे छोड़ कर ना चले जाए। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मैं जहाँ पढ़ती थी ना वो एक सरकारी स्कूल है, तो पेरेंट्स, कईयों के पेरेंट्स क्या करते थे, अपने बच्चों को ना छोड़ के चले जाते थे। वो सोचते थे कि ठीक है ना, सारी जिम्मेदारी स्कूल ही ले लेगा, खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ, ड्रेस भी दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं पहनने को, तो वो रख भी लेंगे। तो मुझे भी कभी कभी लगता था और मेरे दोस्तों को भी लगता था, तो मुझे हमेशा, जब तक मैं 12th पास नहीं हो गई ना, तो ये डर हमेशा सताता था कि कहीं मेरे पेरेंट्स ऐसा तो नहीं करेंगे जैसा बाकी के पेरेंट्स करते हैं। और रात को कभी कभी नींद भी नहीं आती थी। आज भी जब मैं उस घटना का जिक्र करती हूँ या आज भी जब मुझे वो याद आता है तो मेरी आंखें कभी कभी छलक आती है। मैं रात को भी उठती हूँ और मैं सोचती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे वाकई होते थे क्योंकि उनको लगता था कि विकलांग है तो कहीं भी छोड़ दें, क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसी मेंटालिटी लोगों की होती है।
आपको ऐसा तो क्यों लगता था लक्ष्मी जी कि हर कोई ऐसा होगा, आपको ऐसा क्यों लगता था?
मेरे मन में ऐसी भावनाएं आ गई थी, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा था। एक छोटी सी बच्ची थी, एक मैम उसको लेके आई थी, तो उन्होंने बताया कि वो उनको सड़क पे मिली, उसकी माँ ने बस ऐसे ही छोड़ दिया जैसे कि वो उनकी बेटी ही ना हो। तो ऐसे बहुत सारे, मैंने उनकी जिंदगी को ना बड़े करीब से जिया है। 12-13 साल हॉस्टल में बिताए। लोग कहते हैं ना हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी होती है, ये बात सही है, लेकिन आपके जो अनुभव होते हैं ना वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। तो मैंने इस जिंदगी को बहुत ही करीब से देखा है लोगों को ऐसे करते हुए। कईयों के पेरेंट्स छुट्टियां पढ़ने पे भी नहीं आते थे, उनको जबरदस्ती बुलाना पड़ता था, तो बड़ा बुरा लगता था। जब कभी फेस्टिवल्स होते थे तो मेरा घर पास में था, मैं घर भी चले जाती थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं जा पाते थे, तो यही रीजन था।
हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात बताई। दोस्तों यही होता है कहानी बुनने में, जब कहानी हम बुनते हैं तो हम, कोई जरूरी नहीं है कि कल्पना जितनी तेज पावरफुल होगी वही कहानी जबरदस्त होगी, बल्कि अगर हमारी जिंदगी उस कहानी में शामिल हो जाए तो मैं तो समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल कहानी होगी, बहुत ज्यादा, मतलब लोगों को जोड़ेगी, लोग उससे रिलेट कर पाएंगे खुद को और उसकी फीलिंग्स को समझेंगे और एक तरह से भावनात्मक रिश्ता भी कायम होगा, है कि नहीं? तो दीपिका जी, मैं ये चाहूंगा कि कहानी पढ़ ली जाए क्योंकि अब 11 मिनट का वक्त है हमारे पास।
जी शुक्रिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लक्ष्मी जी की कहानी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है काफी लोगों के लिए, पर फिर भी हमें खुदा से कोई ना कोई शिकायत होती है। जैसे कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। लेकिन जो मिला है सब सही है, उसमें भी हम खुश रहते हैं, और जो जीता वही सिकंदर। तो कुछ ऐसे ही अनुभवों को साझा किया है लक्ष्मी जी ने अपनी कहानी में, जिसका नाम है मुझे स्कूल नहीं जाना। तो प्रस्तुत है आज की कहानी। कभी कभी कुदरत भी कितनी क्रूर हो जाती है ना, किसी को बहुत कुछ दे देती है और किसी से कुछ छीन भी लेती है। तो इसी तरह की ये एक कहानी मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जब मैं छोटी थी तब एक अंकल मेरे घर आए। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को एक ब्लाइंड स्कूल के बारे में बताया, जहां विजुअली चैलेंज्ड बच्चे पढ़ते थे। अंकल चाहते थे कि मैं भी स्कूल जाऊं, लेकिन मेरे पापा ने मना कर दिया। उनको लगता था वहां मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। अंकल ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने, और उनको ये लगता था कैसे करेगी, कैसे मैनेज करेगी, बहुत परेशान थे। लेकिन बहुत समझाने के बाद कि हॉस्टल में रहने की आदत पड़ जाएगी और इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो ये सब समझने में मेरे पापा को 2 साल लग गए। मुझे ये बात तब पता चली जब बाजार जाने के बहाने मेरे पापा मुझे एडमिशन कराने ले गए स्कूल में। तब मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने पापा से उसी वक्त कहा कि मैं बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहती और मुझे स्कूल नहीं जाना है। पापा ने मुझे समझाया, बेटा स्कूल तो जाना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ाई करके जिंदगी में कुछ बनना है या नहीं। और पता है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, उन्हें बैड बच्चे कहा जाता है। दरअसल मैं बहुत ही जिद्दी थी, मुझे जब जो चीज चाहिए होती थी तो चाहिए ही होती थी। पापा को बस इसी बात का डर था कि स्कूल में मेरे बच्चे की जिद कैसे पूरी होगी, पता नहीं वो ठीक से खाएगी भी या नहीं। पापा की चिंता इसलिए भी थी क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी और मुंह फुलाकर बैठ जाती थी, कई बार तो खाना भी नहीं खाती थी। मेरे मम्मी पापा मुझे घंटों मनाते रहते थे, शायद इसीलिए स्कूल जाने का सुनकर एक अजीब सा डर मेरे मन में बैठ गया था, जैसे मुझसे कुछ छूट रहा हो। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं स्कूल जा रही थी। मेरी माँ की आंखें छलक आई थी, वह रोती भी क्यों ना। मैं पहली बार घर से दूर जा रही थी और दूसरी बात ये कि मैं विजुअली चैलेंज्ड थी। दिल पर पत्थर रखकर मेरे मम्मी पापा ने मुझे स्कूल भेज दिया और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो स्कूल। लगा जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते, शायद इसीलिए मुझे खुद से दूर भेज रहे हैं। मैं स्कूल में बाकी बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, मैं बहुत रोती थी। पापा हर संडे मुझसे मिलने आते थे, लेकिन आगे चलकर पापा काफी दिनों तक मिलने नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें किसी ने कहा था कि अगर आप बार बार मिलने आएंगे ना तो उसका मन नहीं लगेगा, हॉस्टल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन धीरे धीरे डर डर के हॉस्टल में एडजस्ट करते हुए रहने की आदत बन गई। जब पापा आते भी तो मैं उनसे कोई शिकायत नहीं करती। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं एक आंटी से मिली। आंटी एक लड़की को लेकर स्कूल आई थी, यही कोई 3-4 साल की रही होगी वो लड़की, नाम था डॉली, बहुत प्यारी और सुंदर, कहते हैं ऐसा कि देखने में बहुत सुंदर थी। मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्या ये आपकी बेटी है? आंटी ने जवाब दिया, हाँ अब ये मेरी ही बेटी है, मैंने इसे गोद लिया है। ये सुनकर मैं हैरान हुई कि अब ये मेरी बेटी है, इसका क्या मतलब। मेरी हैरानी देखकर आंटी ने मुझे बताया कि वो कहीं जा रही थी, तब रास्ते पर उन्हें ये लड़की किनारे पर लेटी हुई मिली, बुरी हालत में, अधमरी सी। आंटी ने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि कोई वहां उसे छोड़ गई है, कोई औरत थी, शायद उसकी माँ हो। आंटी को बहुत बुरा लगा, उन्होंने उस बच्ची को गोद में उठाया और कहने लगी, जाने क्यों बच्चियों को लोग इस तरह छोड़ देते हैं, जैसे बच्चियां कोई बोझ हो, भगवान ने इन्हें ऐसा बनाया है तो इसमें इनकी क्या गलती है। अरे विजुअली चैलेंज्ड है तो क्या, आप उनकी आंखें बनिए, क्यों इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया? बहुत बुरा लगा। फिर वो उसे अपने घर ले आई, अपने बच्ची की तरह पालने लगी। पता नहीं क्यों आंटी की बातों से एक डर मेरे मन में बैठ गया, क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ शायद पेरेंट्स ऐसा करते हैं। लेकिन कई महीनों बाद जब एक त्योहार पर पापा मुझे घर ले जाने आए तो मैं बहुत खुश हुई। जैसे ही मैं घर पहुंची तो माँ के गले लगकर खूब रोई और रोते रोते फिर वही कहा, मैंने स्कूल नहीं जाना माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। माँ ने भी ढांढस बंधाते हुए कहा, ठीक है मत जाना। माँ बाप कुछ वादे इसलिए कर देते हैं ताकि बच्चे जिद छोड़ दें। उस दिन माँ के ढांढस बंधाने पर भी मैं चुप तो हो गई, लेकिन एक सप्ताह बाद फिर से स्कूल जाना पड़ा। मैंने माँ पापा से बहुत कहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन दोनों के पास एक ही बहाना था, मुझे पढ़ाई करके कुछ बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। क्योंकि एक अंकल ने एक बार मुझे कहा था कि जब पढ़ लिख लोगे ना तो लोग तुम्हें मैडम बुलाएंगे, तो कैसा लगेगा? तो बस इन्हीं सब बातों की वजह से मैं फिर से स्कूल गई। अब मैं स्कूलिंग पास कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी वो डर मुझे सताता है, अकेली हो जाने का डर। कभी कभी बड़ी बेचैनी सी होती है, सोचती हूँ शायद आज भी कुछ बच्चे मेरी तरह स्कूल नहीं जाना की रट लगाकर स्कूल नहीं जाते होंगे और कहते होंगे मुझे स्कूल नहीं जाना। पर अब तो मैं इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। आज इतने साल बाद जब मैं उस लम्हे को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे माँ पापा हमेशा मुझसे स्कूल मिलने आते। कुछ त्योहारों पर कभी कभी मैं घर भी चली जाती, लेकिन वहीं कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे जो अपने घर नहीं जा पाते थे। वो भी मेरी तरह घर से रोकर आए थे कि उन्हें स्कूल नहीं जाना, पर पढ़ाई तो करनी थी ना। और कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे पापा ने मेरी जिद मान ली होती और मेरी बात मानकर उन्हें मुझे स्कूल ना भेजा होता तो मेरे साथ आज क्या होता। बस यही सोचकर लगता है कि काश ये बच्चे ना कहें कि मुझे स्कूल नहीं जाना। धन्यवाद लक्ष्मी जी,
बहुत शुक्रिया,
बहुत
शुक्रिया।
बहुत खूबसूरत आपकी कहानी,
वाकई बहुत खूबसूरत कहानी है जी।
तो बस इस पे मैं वसीम जी एक बात कहना चाहूंगी कि लक्ष्मी जी के लिए कुछ पंक्ति है, पंक्तियां जो मैं बोलना चाहती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शुक्रिया
जी। दोस्तों, कहानियां केवल गुदगुदाती ही नहीं है, रुलाती भी हैं, और ये कहानी ही ऐसी ही है दोस्तों। फीलिंग का यही वह सिरा है जहां से कहानियां निकलती हैं। अपनी जिंदगी के अनुभव को कहानियों में शामिल कीजिए और कहानी बुनना शुरू कर दीजिए। जैसा कि हमारा फॉर्मेट है क्लू बेस्ड स्टोरी राइटिंग प्रोग्राम, यानी कि हम हर सप्ताह एक टॉपिक देते हैं और उस पर आपको कहानी बुननी होती है। इस बार का हमने टॉपिक दिया है, हम टॉपिक फिर से रिपीट कर देते हैं। इस बार का टॉपिक है पहाड़ों का सफर। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं और अच्छी तरह से अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कीजिएगा अपनी कहानी में, छोटे छोटे शब्दों में, अच्छे शब्दों में, रोमांटिक शब्दों में। रोमांटिक किसी भी तरह की कहानी लिखी जा सकती है। जैसे दीपिका जी, अभी मुझे याद आ रहा था कि एक शेर की पहाड़ से रिलेटेड है कि पिछली सर्दी में वो मुझे पहाड़ों पे ले गया, पिछली सर्दी में वो मुझे पहाड़ों पे ले गया, अब के जून में मैं उसे दिल्ली बुलाऊंगा,
दिल्ली बुलाऊंगा।
तो ये जो शेर है ना, ये फीलिंग है कि मतलब ये एक तरह से मेमोरी है कि पिछली सर्दी में और पहाड़ और भी ठंड हो जाते हैं, तो वहां की वो जाके तप गया, यानी परेशान हो गया ठंडी के मारे, और फिर आके लिख रहा है शेर कि अब के जून में मैं उसे दिल्ली बुलाऊंगा। तो ये सफर है, सर्दी से गर्मी तक के बीच का सफर है। हम इसी तरह के सफर को इस पहाड़ों के सफर में शामिल कर सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हेलो
हेलो हेलो,
किसी की आवाज नहीं आ रही है मुझे।
हेलो
हेलो
जी हमें आ रही है आपकी आवाज।
सजीव जी अगर सुन पा रहे हैं तो लक्ष्मी जी की कहानी पर अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो प्लीज सजीव जी और मनोज जी।
थैंक यू दीपिका, और आपने लक्ष्मी ने बहुत ही प्यारी काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी ये लिखी है, और सच में ये जो डर है इसको हम रिलेट कर पा रहे हैं बहुत, जिस तरह से आपने इसको नरेट किया दैट वाज ब्यूटीफुल दीपिका अगेन। एंड ये टॉपिक भी आप लोगों का काफी अच्छा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन लक्ष्मी एंड दीपिका जी वसीम कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छी कहानी जो आई थी उसको आपने बहुत अच्छे से शेप अप किया एंड प्रेजेंट किया। मुझे लगता है कि हर बार हमारे पास लिखने वालों की तादाद बढ़े ताकि और ज्यादा हमें चॉइस मिले कहानियों का कि हम देख पाए, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये चीजें हो रही हैं। हम लोग अपने पहले एपिसोड से लेके अब तक हमारी जो कहानी हमें प्राप्त हुई है उनकी संख्या बढ़ी है, तो ये जो टॉपिक है ये काफी रोमांटिक हो सकता है अगेन पहाड़ों का सफर और जी हाँ, तो मुझे लगता है कि जो भी रोमांटिक स्टोरीज लिखते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। मैं अभी बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ लिसनर्स में, शुभ्रा जी जो हैं उन्होंने कहानी के बारे में पूछा है तो मुझे लगता है कि वो भी अटेम्प्ट करेंगी, और लक्ष्मी प्लीज दोबारा अटेम्प्ट करना इस बार भी। एक मरियम रमला जी हैं वो भी इसमें लिखने में इंटरेस्टेड आ रही हैं, और भी बहुत सारे लोग जो हैं मुझे लगता है कि अटेम्प्ट कर सकते हैं इस पर।
और सजीव जी मनोज जी तो कश्मीर के कितने उन्होंने वादियों में दिन गुजारे हैं, तो मनोज आप भी जरा अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा।
मनोज सर इसी बार आए, हम चाहेंगे कि कुछ बोलें हमारे प्रोग्राम के लिए और
हौसला अफजाई। नहीं वसीम साहब मैं आपको सच बताऊं ये प्रोग्राम जो है मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है, और मैं तो लक्ष्मी जी के लिए ये कहूंगा कि पहाड़ सहरा नदी ने हमें तलाश किया, पहाड़ सहरा नदी ने हमें तलाश किया, जब हमने कहा सभी ने हमें तलाश किया,
हमें तलाश किया। वाँ।
तो लक्ष्मी जी तो एक ऐसी इंसान है और शख्सियत है कि चाहे वो क्लब हाउस पे हो या मेंजा पे हो हमेशा इनको सुनना अच्छा लगता है, और वाकई लोग जो है तलाश करते हैं कि ये कहाँ हैं लक्ष्मी जी, और जैसे सजीव साहब ने कहा अभी कि एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी है, और ये सच है क्योंकि मैं लक्ष्मी को बहुत करीब से जानता हूँ, इनसे काफी बातें हुई हैं, बहुत गुफ्तगू रही है, और काफी चीजें इन्होंने मेरे साथ शेयर करी हैं अपने हॉस्टल डेज की। तो जब मैं ये कहानी सुन रहा था दीपिका जी की आवाज में जो कि बहुत ही खूबसूरत इन्होंने नरेट किया, तो एक एक वो चीज मैं देख पा रहा था कि जैसे वो लक्ष्मी ने जैसे बायोग्राफी लिखी है और अपने बारे में बताया कि कहाँ क्या उनको उनके जहन में थी ये चीजें कि स्कूल जाना है नहीं जाना है, और जो ख्यालात बचपन में इनके साथ मतलब होते रहे होंगे, और अभी भी ये कह रही हैं कि जब मैं वाकया वो सोचती हूँ तो तब भी आंखें छलक आती हैं, तो ये सच बात है, दिल से जुड़ी हुई कहानी थी। और जैसे कि आपने ही कहा वसीम साहब कि ये जो कहानियां हैं वो समाज और हमारे जिंदगी से ही निकलती हैं, और तभी शायद वो इतनी मकबूल भी होती हैं और बहुत इमोशनल भी होती हैं। तो वसीम साहब एंड दीपिका जी इसी तरह जारी रखिए इस प्रोग्राम को, बहुत ही खूबसूरत आपका प्रोग्राम है, और वाकई एक एक कहानी जो है ना नगीना है आपका, एक एक कहानी जब आप लेकर के आते हैं, और वसीम साहब जो पहली कहानी जब आपने प्रोग्राम शुरू किया था वो आपकी पहली कहानी पहला रूम पहला सर्कल इतना खूबसूरत था, तब से हम तो फैन है जनाब आपके आपकी राइटिंग के भी।
बहुत शुक्रिया सर,
तो बहुत शुक्रिया इसको।
सजीव सर ने अभी कहा कि पहाड़ों का सफर पे रोमांटिक कहानी भी हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल, बट मुझे लगता है कि फैंटेसी भी हो सकती है। जैसे अभी मुझे ख्याल आ रहा था कुछ दिनों पहले कि मैं पहाड़ पे जाऊं और उस पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठकर मूंगफली खाऊं, तो मेरे दोस्त ने कहा कि मूंगफली क्यों खानी, वहां कॉफी क्यों नहीं पी सकते, चाय क्यों नहीं पी सकते। तो ये छोटे छोटे ख्याल जो दिमाग में आते हैं ये कहानी बुनने में बहुत मदद करते हैं, कि वो रोमांटिक कहानी उसमें भी मदद करेंगे। तो दोस्तों हम चाहेंगे, हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो इसी तरह के ख्याल पैदा करें कहानियों में अपने बुने, और हम सबको सुनते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें हमारे इस लिंक को, ताकि और से ज्यादा से ज्यादा लिसनर्स हमें ज्वाइन कर सकें, सुन सकें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास अच्छी कहानियां आ सकें, है कि नहीं।
लक्ष्मी जी कुछ कहना चाहेंगी आप, लक्ष्मी जी कुछ नई कहानी के बारे में या अपनी कहानी के बारे में।
मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत खूबसूरती से इस कहानी को पढ़ा। बस मैं ना एक छोटी सी चीज कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते या जिनके पेरेंट्स हिचकिचाते हैं, तो प्लीज आप उनको अवेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि ऐसे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो अगर मैं, मेरे मम्मी पापा ने सच में मेरी बात मान ली होती तो मैं मेंजा पे नहीं होती और आपको कहानी नहीं सुना रही होती या कहानियां नहीं लिख रही होती, तो आपको शायद नहीं पता होता ना कौन है लक्ष्मी और वो क्या करती है। तो
बिल्कुल लक्ष्मी, मैंने आपको इसीलिए कहा कि आपकी कहानी सबके लिए एक प्रेरणा बन सकती है, प्रेरणा का स्रोत है। तो
और दीपिका जी, हम आगे भी ऐसी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स रखें, जैसा कि अभी लक्ष्मी जी ने कहा कि हम अवेयर कर सकें, तो हम अवेयरनेस को लेकर भी टॉपिक रखेंगे ताकि आने वाले दिनों में इसी तरह की सेंसिटिव कहानियां हमारे पास आए और लोग अवेयर।
बिल्कुल वसीम जी, अगर कहानियों में प्रेरणा है, मैसेज है, तो बहुत ही बेहतर बन जाती है कहानियां।
जी, तो अब एक मिनट हमारे पास वक्त है, मैं फिर से एक बार बता दूं कि अगला टॉपिक है पहाड़ों का सफर। पहाड़ों के सफर पे कहानियां लिख मारिए और भेजिए kahanibuno@gmail.com पर मंडे तक, और कहानी ज्यादा लंबी ना हो, 500 से 700 शब्दों के बीच में ही हो, ताकि उसे एडिट करने में और उसे नैरेट करने में हमें अच्छा सा टाइम मिल जाए। जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सजीव सर का बहुत शुक्रिया, मनोज सर का बहुत शुक्रिया, और लक्ष्मी जी आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी कहानी लिखी हमारे लिए।
और जितने भी लिसनर्स हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, वो ऐसे ही आते रहिए और प्रोग्राम की खूबसूरती बढ़ाते रहिए और कहानियां भेजते रहिए। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
दोनों में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,
थैंक यू ऑल।
If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.